हमने कर्म के बारे में देखा था कि आठ प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी, अंतराय, ये तो हुए घाती कर्म, और वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म है। इनका संबंध अनादि से ही जीव के साथ है, वही कर्म नहीं है, कुछ निकल जाते हैं और कुछ नए आते हैं, परंतु ये जो कर्मों का और जीव का संबंध अनादि से बना रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि बाय चांस जीव कर्म रहित हो जाए। बिना पुरुषार्थ किए और बिना सही पुरुषार्थ किए, और वो सही भी कैसा, जैसा जिन्हें भगवान ने कहा है वैसा अगर यह जीव समझेगा, तत्व का निर्णय करेगा और आत्मा का स्वरूप पहचान कर उसी को जानते रहने से, उसी में एकाग्र होने से उसके मिथ्यात्व का अभाव होगा। फिर राग द्वेष भी क्रम क्रम से अनंतानंद भी पहले जाएगा, बाद में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सारा संजल, इस तरह से वो पूर्ण वितराग और सर्वज्ञ हो सकता है जीव। और अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप में अनंत काल तक अपने आनंद का अनुभव लेते लेते वो विराजमान रहता है। तो ये सारा जो मार्ग है, कर्मों का स्वरूप हम देख रहे है, तो ये हमने आठ प्रकार के कर्म देखे थे, उसमें हमने बंध क्या है और उदय क्या है इसकी चर्चा की थी। कि जीव जब जब राग द्वेष मोह परिणाम करता है उसके निमित्त से नए नए कर्म आते हैं, उसमें आठ प्रकार से वो विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम प्रकृति बंध कहते हैं। जितनी संख्या में आते हैं उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। आते समय ही यह निश्चित होता है कि ये कर्म जीव में कितने काल तक रहेगा, जीव के प्रदेशों में, और वो कब छुप कर निकल जाएगा, उसको कहते हैं स्थिति बंधन, और वो कैसा और कितना फल देगा उसको कहते हैं अनुभाग बंध। अब आज ये स्थिति वगैरह वगैरह के बारे में और डिटेल्स देखें। पेज नंबर 19, कर्म के बंदर उदय की यह कथा सुरस और चमत्कारिक प्रतीत होती है, उसका भय भी लगता है ऐसा तुम्हारा कहना है, इसमें भय का कोई कारण ही नहीं है। जिस तरह अंधेरे कमरे में जाने से बालक डरता है, परंतु उस कमरे में दीपक जलाकर प्रकाशित करने पर बालक का भय निकल जाता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा समस्त वस्तु व्यवस्था जानकर छहो द्रव्यों का स्वरूप बताया है। किसी ने निर्माण नहीं किया, उन्होंने मात्र जाना है और उसे बताया है। वह कथन आचार्यों द्वारा लिखित आगम ग्रंथों में हमें उपलब्ध है। इस आगम के प्रकाश में, यानी आगम के द्वारा, आगम पढ़कर और सुनकर जीव कर्म नो कर्म, यानी शरीर, मन, वाणी आदि का स्वरूप, यानी पहले तो जीव अलग लिया, कर्म और नो कर्म में क्या क्या आया, शरीर, मन, वाणी इत्यादि, उनका एक दूसरे से होने वाला संबंध, परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना, कर्म का और जीव का परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना होता है, यह बात अभी हमारी पंचाध्याय में चल रही है। पुराने कर्मों का उदय, उदय यानी फल देना, जब उस फल में जीव जुड़ता है और मोहराग द्वेष करता है तब, यदि मोहराग द्वेष नहीं करे, मिथ्या तो नहीं करे, तो कुछ नहीं होगा। तो पुराने कर्मों का उदय, जीव उसमें मोहराग द्वेष करे तो नवे बंद होता है, नया कर्म बनता है। जिससे से हमने ये देखा भी था कि आठों कर्मों का उदय सतत हर समय चल रहा है, फिर भी मोहनीय कर्म ही नए बंध में निमित्त है। यह परस्पर निमित्त निमित्तपना, उनकी विविध अवस्थाएं स्पष्ट रूप से अपने ख्याल में आने पर स्वयं के भिन्न चैतन्य में अस्तित्व का भान हमें होता है। जब पता चलता है हमें खाली ये शरीर भी भिन्न है अपने से, तो इनसे मैं भिन्न चैतन्य हूँ, इसका ख्याल आता है। वैसे कर्म तो सूक्ष्म है, कर्म नहीं दिखता, परंतु उसका फल हमें दिखता है, अनुभव में आता है। क्योंकि कर्म तो सूक्ष्म है पुद्गल रूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, परंतु वो हमारे इंद्रिय ज्ञान द्वारा हम जान नहीं सकते उसको, क्योंकि वो सूक्ष्म है। परंतु उसका फल जरूर ख्याल में आता है, दिखता तो नहीं है परंतु उसका फल ख्याल में आता है। और वो फल ख्याल में आने पर हम उससे भेद ज्ञान कर सकते हैं कि मैं तो चैतन्यमय हूँ और ये जो फल मिल रहा है कर्मों का वो मुझसे भिन्न है। हमने गए पाठ में देखा था आठ कर्मों में क्या क्या बनता है, और वो कर्मों का जो फल है वो मेरे चैतन्य में अस्तित्व से भिन्न है। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ और ये सारा फल जो है वो मुझसे न्यारा है, भिन्न है, अलग है। तो कर्म संबंधी अपना भय भाग जाता है। कर्म का बंध निरंतर होता है, निरंतर ने एक समय का भी उसमें गैप नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता। जागृत अवस्था नींद बेहोशी, हमें लगे कोमा में है तो वो क्या करता होगा, उसको कैसा कर्म बंध होता होगा। वहाँ भी जीव है तो उसका चारित्र गुण भी काम कर रहा है, ज्ञान गुण भी काम कर रहा है, सारे ही गुण अनंत गुण काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्याय एक समय भी नहीं रुकती, निरंतर परिणमन होता है। क्यों? हाँ दीपाली, द्रव्य में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसके कारण वो निरंतर परिणमन होता है? द्रव्यत्व गुण शब्द। तो इसलिए इन कंडीशन में कौन सी, अभी जागृत अवस्था में भी, नींद में भी, बेहोशी में भी और विग्रह गति में भी कर्म का बंध निरंतर होता है। जीव यहाँ से मर गया, अब दो तीन समय में जाकर अन्य कहीं उत्पन्न होगा, देव में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई तिरंच होगा या कोई दोबारा मनुष्य होगा। तो बीच में जो गैप है दो समय का, तो उस समय उसको बंध होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी उसको बंध होता है, इसीलिए उसको निरंतर कहा। यहाँ तुम प्रश्न पूछोगी कि विग्रह गति क्या होती है, आपको नहीं पड़ा प्रश्न विग्रह गति क्या होती है, मालूम है? नहीं, अभी बताते। मनुष्य गति, तिर्यंत गति, देव गति और नर गति, ये चार गतियाँ, और इनका अभाव करके प्राप्त हुई सिद्ध गति तो हम जानते हैं, तो फिर यह कौन सी नई गति है, ऐसा प्रश्न है। क्योंकि गति गति ऐसे दोनों शब्द आए ना सिमिलर, तो हमें लगता है ये कौन सी गति होगी। तो देखो, विग्रह यानी देह, अभी विग्रह शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये पहला अर्थ देख रही है। विग्रह यानी देह, मरण के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए परभव की ओर जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। यानी देह धारण, नया देह धारण करने के लिए जो वो गमन करेगा उसको कहा विग्रह गति। विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ है रोकना या निरोध करना। इस विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नौकर्म पुद्गलों का यानी शरीर मन वाणी संबंधी नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, उनका निरोध होता है, इसलिए इसे विग्रह गति कहते हैं। ये दूसरा अर्थ, पहला अर्थ विग्रह यानी देह, अभी दूसरा अर्थ विग्रह यानी रोकना। हमने पहले देखा था कि पांच वर्गणाएं जीव ग्रहण कर सकता है, कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। कारमान वर्गणा को छोड़कर ये जो चार वर्गणाएं हैं इनको नौ कर्म वर्गणा कहते हैं। अब विग्रहदशा में इनका ग्रहण नहीं है। जब वहाँ अन्य वहाँ जाएगा जहाँ जन्मने का ठिकाना है, वहाँ के पुद्गल परमाणु वो शरीर रूप से धारण करेगा। हमने देखा था ना पर्याप्ति में कि वहाँ के पुद्गल परमाणु ग्रहण करेगा, उसको कहते आहार, फिर उसको खल रूप रस रूप परिणाम आएगा, ऐसे आदि आदि सारी बात। अब यहाँ तो हम विग्रह गति का अर्थ देख रहे हैं। अब क्योंकि इसकी चर्चा चल ही रही है तो इसके बारे में और जानकारी बता देती हूँ। इस संबंध में दत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र 25 26 27 29 और 30 की अर्थ प्रकाशिका नाम के टीका ग्रंथ से यह संदर्भ लिख रही हूँ। अर्थ प्रकाशिका यह टीका जो है विश्लेषणात्मक जो ग्रंथ है वो पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा हुआ है धुंधारी भाषा, जैसे भी हम रत्नगण शाकाचार पढ़ रहे हैं उन्हीं की लिखी हुई है टीका। मरण के पश्चात नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव गमन करता है, उस समय आकाश के प्रदेशों के श्रेणी रूप पंक्तियों में सीधा गमन करता है, तिरछा गमन नहीं करता। श्रेणी रूप पंक्ति नहीं, स्ट्रेट लाइन, हाँ, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये आकाश के प्रदेश ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे भी है, तो ये कैसे गमन करता है? समझो यहाँ से उसको यहाँ जाना है तो पहले सीधा जाएगा और फिर राइट एंगल में मुड़ेगा। तो ये तो एक सतह पर हुआ, पढ़ते ही इसी में से पढ़ते तो पता चलेगा। देखो तिरछा गमन नहीं करता, यानी यहाँ से ऐसे डायरेक्ट वो यहाँ ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, समझ आते ना? तिरछा गमन नहीं होगा, यानी पूर्व पश्चिम दक्षिण या उत्तर में कहीं भी जा सकता है जहाँ कहीं उसका जाने का ठिकाना होगा, परंतु ऐसा है इन बिटवीन जाए आता है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट के ऐसा जो कोई विदिशा जिसको कहते हैं आग्नेय या नैऋत्य वायव्य ईशा, इन दिशाओं में उसका गमन नहीं होता, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है या उसी लेवल पर कहीं भी जा सकता है। यह गमन ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की ओर और तिर्यक यानी आड़ा गमन मात्र यानी केवल पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर इन मुख्य दिशाओं में ही होता है। तिरछा यानी विदिशाओं में अर्थात आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान इन उप दिशाओं में गमन नहीं होता। जैसे शतरंज के खेल में हाथी सामने या बाजू में सीधा चाल चलता है परंतु ऊंट की तरह तिरछा नहीं चलता। ऊंट कैसे ऐसे चलते है ना, शतरंज का खेल देखा है तो ये ऊंट तो तिरछा चलेगा, मतलब हाथी तो या तो ऐसा सीधा चलेगा या तो ऐसा। वैसे ये विग्रह गति में जीव जो गमन करेगा वो आड़ा या सीधा जाएगा। दूसरा भी एक दृष्टांत देख सकती हो, सीधे और आड़े धागों से बना रूमाल देखो। धागे पर से ही चलकर जाना हो तो एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने की ओर जाने के लिए पहले सीधा धागा पकड़कर जाना होगा। ये नीचे फिगर दिखाई ना, उसमें जो थोड़ी लेफ्ट साइड में वाली वो ब्राइट लाइन बीच में डार्क लाइन है, देखिए पहले सीधा और फिर वो राइट एंगल में मुड़ गया। पहले सीधा धागा पकड़कर जाना होगा और फिर 90 अंश में मुड़कर फिर आड़े धागे पर से सीधा जाकर इच्छित बिंदु पर पहुंचेंगे। एक सतह पर जाना हो तो कहीं भी अधिक से अधिक एक मोड़ लेकर जा सकते हैं। देखो ये एक सतह यानी एक लेवल, जैसे पेपर थिन जिसको हम कहते हैं, एक प्रदेश इतना थिन, अभी उसी लेवल में उसको जाना है तो कैसे? अभी ऐसा पकड़ती हूँ तो इस पाटी पर से किसी एक बिंदु में से कोई भी कहीं का भी बिंदु पकड़ो और किसी अन्य एक बिंदु की ओर जाना है, तो ये बिंदु यहाँ होगा तो सीधा एक साथ ऐसा सीधा जा सकता है, परंतु अन्य कोई तीर्थ जाना हो तो फिर वो एक मोड़ लेकर कहीं भी जा सकता है। बराबर, समझो ये बिंदु यहाँ होगा तो भी यहाँ ऐसा जा सकता है या ऐसा जा सकता है, यानी एक ही सतह पर जाने के लिए उसको एक मोड़ काफी है अधिक से अधिक। सीधा उसी लाइन में होगा तो बिना मोड़ के भी जा सकता है, उसको मोड़ लेने की कोई जरूरत नहीं, परंतु अन्यत्र तीर्थ जाने योग्य कोई भी स्थान होगा तो एक मोड़ में जाएगा। इसी सतह पर जाने के लिए उसको एक से अधिक मोड नहीं लेने पड़ते। बराबर। अब आगे एक सतह पर जाना हो तो कहीं भी अधिक से अधिक एक मोड लेकर जा सकते हैं, परंतु लोकाकाश तो घन स्वरूप है, घने में हम जिसको ठोकरा कहते हैं ना, थ्री डायमेंशन। अभी कोई सीधी चीज है थ्री डायमेंशन वाली, तो इसमें समझो इसी ऊपर के लेवल में जाना है तो एक मोड में जा सकता है। अब समझो ये पॉइंट यहाँ है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर के एक मोड लेकर उस क्रम में आया और फिर नीचे की ओर आया, यानी यहाँ एक और एक मोड लिया। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में अधिक से अधिक दो मोड में जा सकता है। हाँ हाँ, टेबल भी घन है, कोई भी घन वस्तु ले लो तो उसमें एक जगह से अभी इसी सतह पर जाना हो तो एक मोड से जा सकते। अब समझो वो पैर है नीचे, वहाँ तक जाना है तो पहले यहाँ एक मोड लेकर यहाँ तक आया और फिर नीचे की ओर गया, तो दो मोड में काम हो गया। तो लोकाकाश यदि ऐसा क्या कहते हैं क्यूबिकल होता इक्वल डायमेंशन वाला तो दो मोड में काम चलता, परंतु अभी लोकाकाश कैसा है आपको तो मालूम है ना फिगर, ऐसी ये तो एक सतह हो गई सामने वाली, तो जिसको थ्री डायमेंशन है ये दक्षिणोत्तर ऐसा फैला हुआ है। तो यहीं पर कहीं ऊपर नीचे जाना होता उसको तो सीधा बिना मोड़ के या एक मोड़ समझो यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ गया, एक मोड़ के में काम चलता उसको। अभी और उसको अंदर की ओर कहीं जाना है तो और ऐसे उसको अंदर जाना पड़ता, परंतु समझो कोई यहाँ पर जीव है और उसको यहाँ जाना है तो ये लोकाकाश के बाहर से तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हाँ बेटा, और बाकी जी द्रव्य यहाँ कौन सा द्रव्य है बाहर? अलोका। वेरी गुड। यानी ये छहो द्रव्य, अन्य छहो द्रव्य जो है वो लोकाकाश में ही है, तो जीव अलोकाकाश में होकर यहाँ नहीं पहुँच सकता ऊपर। यहाँ आता है ना ब्रॉड, ये ब्रह्म स्वर्ग के यहाँ वो पांच राजू है उसकी विद लोकाकाश की, और यहाँ तो है सात राजू, तो यहाँ तो यानी इससे बाहर है, ये दो राजू बाहर है तो यहाँ से डायरेक्ट तो बाहर से बाहर नहीं आ सकता, तो पहले उसके लिए अंदर आना पड़ेगा, फिर एक मोड़ लिया, फिर यहाँ जाना है ना तो ये दूसरा मोड़ लिया, परंतु इसी सतह पर नहीं, अंदर है, डीप है, अंदर दक्षिण की ओर है, तो फिर यहाँ उसको और एक टर्न लेना पड़ेगा। इसलिए लोकाकाश में हो सकता है कि उसको अधिक से अधिक तीन मोड़ लेने पड़े, उससे अधिक मोड़ नहीं ले सकता, इन लेने की जरूरत ही नहीं, कहीं भी पहुंच सकता है वो। तो ऐसा नियम है कि स्ट्रेट लाइन में यदि उसको पहुंचना है तो एक समय में पहुंच सकता है, कहीं भी चौदह राज्यों भी गमन कर सकता है वो एक समय में। समझो नीचे के वात वाले का जीव अभी यहाँ ऊपर के वात वाले में जन्म न हो तो ये भी सीधा चौदह राज्यों गमन करके एक समय में पहुंच जाएगा, यदि उसी सेम उसी लाइन में होगा तो एक प्रदेश भी इधर उधर नहीं, समझो यहाँ के बदले यहाँ होगा तो एक मोड़ यहाँ लेना पड़ेगा। तो यदि एक मोड़ लेता है तो उसके लिए दो समय लगते हैं, और फिर दो मोड लेना है तो तीन समय, तीन मोड लेना है तो चार समय। तो कोई भी जीव मर जाता है तो चार समय से उसको अधिक समय नहीं लगता दूसरी स्थिति में जन्म लेने के लिए, वैसे उसकी आयु तो उसी समय चालू हो जाती है। यहाँ मनुष्य तरीके से मर गया तो अगले ही समय में वो जो तिर्यंश मनुष्य देव जो उसकी आयु चालू हो गई, परंतु अभी उसने शरीर धारण नहीं किया, ख्याल में आया ना? देखो अभी इसको पढ़ते हैं। लोकाकाश तो घन स्वरूप है, दूसरी लाइन नीचे से पैराग्राफ की दूसरी लाइन, इसलिए अन्य सतह पर अन्य लेवल पर जाने के लिए ऊपर या नीचे की ओर भी जाना पड़ेगा। आकृति में दिखाया है वैसे चौरस घन हो तो किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक दो मोड़ लेने पड़ेंगे, परंतु लोकाकाश के आकार से तो तुम परिचित हो ही, उसका पूर्व पश्चिम विस्तार ऊपर से नीचे तक असमान है, हमने देखा ना ऊपर कम है फिर ज्यादा है फिर कम है फिर ज्यादा है, इसलिए नीचे के एक कोने से पहले मध्य के एक राजू में आकर फिर ऊपर की ओर गमन करना होगा और आवश्यक हो तो और दो मोड़ लेकर जीव कहीं भी पहुंच सकता है। मरण के पश्चात संसारी जीवों का परभव धारण करने के लिए यह जो गमन मोड़ सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं, क्योंकि विग्रह शब्द का मोड़ सहित ऐसा भी अर्थ होता है, हमने विग्रह यानी बांका क्या मोड़ यानी टर्न। पहले विग्रह शब्द का अर्थ हमने देखा था देव, फिर दूसरा शब्द अर्थ देखा था रोकना, यानी संभी ने भी रोका तो इसको कहते रोकना या आने नहीं देना, क्या नहीं आने देता वो कर्म नो कर्म नहीं आते इसलिए उसको विग्रह का, या अभी विग्रह का तीसरा अर्थ क्या है मोड़ सहित उसको विग्रह कहते। और जो मोड़ रहित सीधी गमन सीधा गमन होगा तो क्या कहेंगे अविग्रह, ये बात आती है देखो आगे लिखा है मोड़ सहित ऐसा भी अर्थ होता है। इसमें तीर की भांति सीधी गति एक समय की है उसे इशु गति या रुजु गति कहते हैं। एक ही समय में जीव अन्यत्र पहुंच उसी समय में जिस समय मरण हुआ उसी समय में वहां पहुंच गया वो एक ही समय में। एक मोड़ वाली गति को पाणि मुक्ता गति कहते हैं, क्या कहते बेटा पाणि मुक्ता। इसमें दो समय लगते हैं जिसमें दो मोड़ होते हैं ऐसी लांगलिका गति में तीन समय लगते। देखो बिना मोड़ के वो रुजु गति, एक मोड़ है वो पाणि मुक्ता और दो मोड़ है वो लांगलिका गति। लांगल यानी हल, हल के समान इसमें दो मोड़ होते हैं। तीन मोड़ वाली गोमूत्रिका गति में चार समय लगते हैं, इससे अधिक काल दूसरे भाव में जाने के लिए नहीं लगता। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती फिरती हो या मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती हो। ये लोग की मान्यता है ना लोक में ऐसी, अरे उसकी आत्मा यहाँ कहीं घूम रही हो तो ये यहाँ तेरे बच्चे को मैं संभालूंगी यहाँ फिर वो आत्मा मुक्त हो जाएगी शांत होगी, ऐसे कुछ न कुछ वो मानते रहते हैं, ऐसे बहुत मान्यताएं चलती रहती है लोक मूर्ता में। हाँ देखो हमें देशांतर में पर्यटन करना हो तो कितनी सारी बातों की चिंता करनी पड़ती है, टिकट बुकिंग करना होना बुकिंग होना चाहिए, वीजा मिलना चाहिए, रहने का इंतजाम, पर्यटन स्थलों की जानकारी, पैसों की व्यवस्था, खान पान संबंधी चिंता, चोरों का भय, एक ना दो कितनी सारी चिंताएं बनी रहती है। परंतु जीव को भव भवांतर में भटकना हो तो उसे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। ये बिना चिंता के हम अनादि से आज तक भटकते आए ना, तभी इसको भटकने की रुचि जो है वो समाप्त नहीं हुई। पहले भव में ही उसके आगामी भव संबंधी सब बुकिंग तैयार रहता है, अगला भव कौन सा होगा, वहाँ शरीर कैसा होगा, इंद्रियां कितनी मिलेगी, संयोग कौन कौन से होंगे, सब कुछ निश्चित होता है। कौन निश्चित करता है, कर्म किसने बांधे, क्योंकि कौन से कर्म वहाँ है वो कौन ने किसने निश्चित किया, जीव के राग द्वेष परिणामों ने। तो अगला सारा बुकिंग हम ही कर लेते हैं और फिर रोते अरे अरे हाय हाय मुझे ऐसे संयोग क्यों प्राप्त हुए, तो ये सारा हमारा ही किया धरा है और हम मानते हैं कि नहीं नहीं वो मेरा पड़ोसी या मेरा कोई रिश्तेदार मुझे तकलीफ दे रहा है, ऐसे है ही नहीं। देखो परंतु यदि उसे इस कर्म बंधन और भव भ्रमण से भय लगता हो तो भव का अभाव करने की विधि उसे जिनागम के आधार से सीखनी पड़ेगी। लोग क्या हम कहने की परिणाम सुधारो अगला भव अच्छा मिलेगा, हमको अच्छा भव नहीं मिलाना है, हमको तो भव का अभाव करना है। और भले भव का अभाव करने की हमने मार्ग चुन लिया, उस मार्ग पर हमने चलना शुरू किया, भले उसमें दो चार भव मिल भी जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो भव का अभाव करने का है। पहले देखा ना पंखा का बटन बंद किया भले वो चलते हुए दिख रहा है, फिर भी वो अभी रुकने के लिए है। वैसे अभी जो हमने जिनेंद्र भगवान के आज्ञा के अनुसार ये जो मार्ग अपनाया है, तो उसमें भले और दो चार भाव हो भी जाएंगे, तो भी अभी हमारे ये मुक्ति का मार्ग है, यानी भाव के अभाव का मार्ग है, जिसमें मोड़ यानी वक्रता नहीं होती, यानी जिसमें विग्रह नहीं होता, उसे अविग्रह गति कहते हैं, इसी को रुज गति कहते हैं। यानी वो एक समय में जाने वाला, उसमें तो मोड़ नहीं होता, इसलिए उसको अविग्रह गति भी कहते हैं। इसका काल एक समय है, जीव एक समय में अधिक से अधिक 14 राजु गमन कर सकता है। ये तत्वा सूत्र में इसका सूत्र है, आपको याद होगा। तो पहले तो विग्रह गति के, फिर अविग्रह, ऐसा भी उसने सूत्र आया, उसी में से ये सारा लिया है। अविग्रह यानी वो रुजु गति वाले को अविग्रह गति कहते, एक समय में जाता है। लोकाकाश के नीचे से ऊपर तक की लंबाई 14 राशि, एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है। और हमें साइंटिस्ट ने इतना इतना सारा, अरे इतने प्रकाश वर्ष हो जाता है तो कितना उसमें लगता है, आहा क्या आश्चर्य है ना, लाखों प्रकाश वर्ष, लाखों अब्जो ऐसा, तो इतने वहां से आया ये प्रकाश किरण, तो हमें लगता है कितने अद्भुत। अरे मगर वो पुद्गल की ऐसी शक्ति उसमें पड़ी है, उसके कारण आता है। हमने खोज निकाला, हमने ढूंढ, हमने तो अभी जाना, हमने जाना इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। जैसे अणु में शक्ति है, ये अभी अभी जाना कि अणु में शक्ति तैयार की जो नहीं थी। हाँ दीपाली, जो नहीं थी उसमें डाली या उसमें जो थी उसको जाना? हाँ, तो यहाँ ज्ञान का महत्व क्या है, ज्ञान की वो जान सकता है, उसके जानने में आया। और ये जो पुद्गल की शक्ति, वो पुद्गल में उसके अपने कारण है, जीव के कारण वहाँ उत्पन्न नहीं हुई है, जीव ने उसको उत्पन्न नहीं किया है। वैसे ही मेरी जो शक्ति है, अनंत शक्तियाँ जो है, वो मेरे अपने कारण से स्वयं सिद्ध शक्तियाँ है, अन्य किसी के कारण वो उत्पन्न नहीं हुई है। और उसकी जो पर्याय भी प्रकट होगी, पर्याय में जो शक्ति व्यक्त होगी, वो भी मेरे अपने कारण से होगी, क्योंकि पर्याय रूप परिणमने की शक्ति भी मेरी अपनी है। वो भी निमित्त आया इसलिए उसमें पलट गया, भगवान की देशना मिली इसलिए यहाँ परिणमन हुआ, नहीं तो बिना परिणमन का रह जाता इतनी। ये बराबर अभिप्राय में रखना। जब भगवान की देशना प्राप्त होती है, हमें सम्यक दर्शन होगा, तो क्या कहेंगे, हे भगवान अनादि से मैं भटकता था, आपके कारण मुझे ये मार्ग मिला। ऐसे ही वहाँ उपचार होता है, और होना भी चाहिए, नहीं तो स्वच्छंदता हो जाए। क्योंकि जिसको ऐसा मार्ग प्रकट होता है, उसको भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति तो ऐसी विनय भाव आता भी है, बहुमान भी आता है, क्या इन्होंने ये मार्ग अगर नहीं बताया होता तो हमको कैसे प्राप्त होता। कुनकुंदाचार्य ने अगर नहीं लिखा होता तो हमें आत्मा की ऐसी सीधी सरल बात कैसे समझ में आती। संजय स्वामी ने हमें नहीं बताया होता तो इतने सारे ग्रंथ हमारे पास, हमारे ये तो हमारी धरोहर है, हमारे घरों में थे, फिर भी हमें उसकी रुचि क्यों नहीं थी, उसके हमने पढ़कर भी अर्थ क्यों नहीं समझता था, तो उनके प्रति ऐसा अहोभाव आ जाता है। परंतु ज्ञान में ये नहीं, ये तो आचरण रूप हो ना, ये उनके अहोभाव आना, वो शब्दों में व्यक्त करना, ये सारा व्यवहार है। फिर भी उसका हम निश्चय, वो अभिप्राय भी हमें ख्याल है कि ये जो जो कार्य हो रहे हैं वो उस वस्तु में उसके अपने स्वयं सिद्ध शक्ति के कारण होते हैं। क्योंकि परिणमन का स्वभाव भी द्रव्य का है, और वो कौन सा परिणमन हो यह भी द्रव्य की अपनी योग्यता निश्चित है। तीनों काल के सारी ही योग्यता उसके पास पड़ी है अंदर, और उस योग्यता के अनुसार वैसा ही वही कार्य होगा, अन्य नहीं होगा। ये सारा हमने पहले क्रमबद्ध पर्याय और निमित्त उपादान में बहुत देखा, अभी जरा दोहरा दिया आपने, है ये देखिए, ये नीचे के तरह का नीचे चौथी लाइन। विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भला उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजु जाना, एक ही समय में पहुंचे। पुद्गल में भी अत्यंत मंद वेग से एक समय में एक प्रदेश जितना गमन करता है, और अत्यंत जलद वेग से एक समय में 14 राजु गमन करता है। और विग्रह गति में आहारक अनाहारक का नियम देखेंगे, यह जानकारी भविष्य में मार्गणा की चर्चा में कार्यकारी होगी। हम पहले मार्गणा सीख कर अभी यह पढ़ रहे हैं, इसलिए आहारक अनाहारक तो हमें पता है, फिर भी यहाँ भी रिपीट करते थे। तुम कहोगे कि विग्रह गति में तो जीव के शरीर नहीं होता, तो फिर वह आहार यानी भोजन किस तरह करता होगा? आहारक कहा ना, और आहारक का अभी अर्थ मालूम नहीं है, तो हमें क्या लगता है हम जो भोजन करते वही आहार होगा? बेटी, आहार शब्द के अनेक अर्थ हैं और आहार भी अनेक प्रकार का है। आहार यानी भोजन, आहार यानी ग्रहण, आहार नाम की संज्ञा है, आहार नाम की मार्गणा है, आहार नाम की वर्गणा भी है, आहार नाम की पर्याप्ति भी है, है ना? हमने ये सारा पढ़ा है अभी। हाँ, आहार संज्ञा ना, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये संज्ञा भी हमने देखी थी, आहार मार्गणा भी देखी थी लास्ट एकदम, संज्ञा आहार सौ मार्गणा में से अंतिम मार्गणा भी हमने देखी थी। देखो, आहार छह प्रकार का है। अभी ये आहार, ये जो जीव क्या क्या ग्रहण करता है वो भी छह प्रकार का बताया। मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं। मराठी में भी कवल कहते हैं उसको, और हिंदी में कवल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ग्रास। ये अंग्रेजी वाला ग्रास नहीं, अंग्रेजी वाला ग्रास नहीं, जिसको हिंदी में ग्रास कहते हैं मराठी में घास कहते हैं, और मराठी में घास कहे तो हिंदी में वो गवत अर्थ होगा, और हिंदी में घास कहेंगे तो अंग्रेजी में गवत अर्थ होगा। ये एक प्रकार हुआ कवलाहार। कर्म आहार यानी कर्म का ग्रहण करना, नो कर्म आहार यानी शरीर के जो हमने देखे ना परमाणु आदि उसको ग्रहण करना, लेपाहार, लेप आहार ये हम लगाते ऊपर एप्लीकेशन जो कहते हैं लोकल एप्लीकेशन, वो भी असर होता है ना शरीर में, तो उसको कहते हैं लेपाहार। ओजाहार यानी ओज यानी जो इंडो में जो होता है ना वाइट या येलो जो कुछ होता होगा, और जो वहाँ का जो जीव है उसको ग्रहण करता रहता है और अपना पोषण करता है, उसको कहते हैं ओजाहार। कवलाहार जो भी हमने देखा था, और मानसिक आहार, मानसिक आहार यानी देवों के होता है, इच्छा हुई भोजन के कब कंठ में से अमृत झरता है और उनको तृप्ति हो जाती है, उसको कहते हैं मानसिक आहार। इस तरह आहार के कुल छह प्रकार है। तुम कहोगे कोई पैसे खाता है तो कोई गालियां खाता है, यह कौन सा आहार है? हम राजनीति के बारे में थोड़े ही बोल रहे हैं, अस्तु थोड़ा सा विषयांतर। देखो, हमने पहले देखा है कि जीव हर समय कर्म का ग्रहण करते ही आया है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे संयोग केवली गुणस्थान नामक अरहंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। हमने योग मार्गणा में भी इसमें चर्चा की थी डिटेल में, इसलिए ये अभी आसान लग रहा है ना। कर्म का ग्रहण और नो कर्म का ग्रहण ये क्यों होता है? योग के कारण होता है। अभी योग को भी यहाँ समझाएंगे फिर। परंतु शरीर मन वाणी आदि संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है। औदारिक, वैक्रिक और आहारक इन तीन शरीर तथा छह पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है। हमने देखी थी छह पर्याप्ति, तो उसके योग्य जो आहार नो कर्म ग्रहण करता है, पहले तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, फिर उसको खल और रस रूप परिणाम आया, इसको कहते वो आहार पर्याप्ति के योग्य परमाणु हुए, फिर उसको और फिर उसमें से हड्डी चाम आदि बनाए, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति आदि आदि जो है, तो इसलिए यहाँ लिखा है छह पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है। अभी संधि पंचेंद्रिय होगा तो उसके पास छह पर्याप्ति है, तो वैसा वो ग्रहण करेगा। अभी अन्य जो असंगी जीव है उसको पांच पर्याप्ति है, तो उसमें वो ग्रहण करेगा, मन संबंधी परमाणु वो ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि अपनी अपनी पर्याप्ति के योग्य परमाणु वो ग्रहण करता है। और इस तरह का आहार ग्रहण करने वाला जीव आहार कहलाता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन छह पर्याप्त संबंधी विस्तार सहित चर्चा बाद में करूंगी जो हम कर आए हैं। एक समय वाली रुजुगति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है, यानी एक समय के लिए भी वो बिना आहार के यानी अनाहारक नहीं होता, आहारक ही होता है। जिस समय मरण हुआ उसी एक समय में गमन करके वह पहुंच गया, यहाँ मरा, फिर एक समय में वहाँ जा गया वो जहाँ उसको जन्म लेना है, और उसी समय में उसने पुद्गल परमाणु का नौ कर्म का ग्रहण किया, तो वो आहारक ही रहा, अनाहारक नहीं हुआ। यहाँ के सारे ये शरीर के परमाणु छोड़ दिए, अभी उसी एक समय में वो वहाँ पहुँचा और उसी समय में उसने वहाँ के परमाणु भी ग्रहण किए, यहाँ के तो छोड़ दिए पहले समय में, और दूसरे समय में गमन भी किया और वहाँ के परमाणु भी शरीर रूप से लिए, इसलिए वो बीच में एक समय का ज्ञात नहीं पड़ा। समझे, पहले समय में तो मनुष्य संबंधी सारे परमाणु छोड़ दिया, क्या क्या ले जाएगा साथ में, कर्म कारमान वर्गणा तेजस वर्गणा जो उसकी वो साथ में जाएंगी, और बाकी सारा ये सारा जिसके लिए इतना आयु भर काम पाप किया या कुछ भी किया, वो झगड़े किए, वो सारा यहीं पर रह जाएगा, और झगड़े के कारण जो कर्म बंधे वो साथ में ले जाएगा। देखो कैसा है, न्याय है कि अन्याय है, देखो। अनाथ मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है, परंतु जो जीव एक मोड़ लेकर पर हो जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक हो जाता है, यानी एक मोड़ वाला जीव एक समय के लिए अनाहारक, कौन से समय के लिए, पहले वाले के दूसरे, पहले वाले यहाँ मरा, फिर जब तक वो मोड़ नहीं है तब तक तो अनाहारक, फिर मोड़ लेने के बाद उसी समय में वहाँ पहुँच कर उसने आहार ग्रहण किया, इसलिए दूसरे समय में आहारक। अभी जिसने दो मोड़ लिए हैं वो कितने समय तक अनाहारक रहेगा, दो समय, क्योंकि मोड़ के पहले पहले वो अनाहारक रहेगा, अंतिम मोड़ के अंतिम यानी बाद में जो उसी समय में वो शरीर ग्रहण करेगा तब वो आहारक कहलाएगा। इसके तीन मोड़ है, ऐसे तीन समय, एक मोड़ एक समय अनाहारक ऐसा लेना, क्योंकि चार समय में पहुंचता है ना, चार समय में पहुंचता है तो तीन समय अनाहारक, जो तीन समय में पहुंचता है वो दो समय अनाहारक, जो दो समय में पहुंचता है वो एक समय अनाहारक, और जो उसी समय में पहुंचता है वो आहारक ही रहता है, अनाहारक होता ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि चारित्र गुण है तो क्रोध मान माया लोग चल ही रहे उसके, कारण उसका अपना चारित्र गुण का परिणाम चल रहे हैं ना, जैसे अभी पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या कारण हमें नजर आता है, ये पृथ्वी का ही जीव है, उनमें कैसे हो होता होगा, निगोध जो है उसमें राग द्वेष है कि नहीं पहले ये निर्णय करो, फिर कैसे होता है वो तो बाद में देखेंगे, क्यों है, चारित्र गुण है तो उसका कुछ न कुछ कार्य तो चलता रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कोई भी गुण बिना परिणमन का नहीं रहेगा, तो वहाँ भी ये मिथ्या चारित्र चल रहा है उसका, कि सम्यक है मिथ्या है, तो वहाँ मिथ्या तो भी है, यानी श्रद्धा गुण का भी विपरीत पड़ा है, उसका भी कार्य चल रहा है, राग द्वेष भी हो रहे उसके, वहाँ तो हमने देखे थे पहले कि ये तो जो अन्य अन्य जो जीव है वो एक आदि, तो उसमें तो मुख्य ये तो अशुभ लेशा ही होती है, यानी इसे उनके तीर संकलेश परिणाम वहाँ चलते रहे। हम जो इसे बाहर से जिसके क्रोध दिखे उससे हम कहते हाँ इसको कारण मिला, तो हम कारण बाहर से ही ढूंढते हैं, तो उनके भी कर्मों का उदय होगा कि नहीं, चारित्र मोहनीय का, दर्शन मोहनीय का, अभी वही उसको कारण लेगा। अनाहारक है तो शरीर अभी ग्रहण किया नहीं है, परंतु वहाँ कर्म है, कर्म का उदय भी है पहले वाले, और जीव का चारित्र गुण का भी कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है। शरीर को लेना इसी को नौकर्म कहते हैं, नौकर्मा है। हाँ, शरीर के परमाणु नहीं ग्रहण करता इसलिए उसको अनारक कहा। और वहाँ भी नया कर्म का बंध चल रहा है, बंध चल रहा है ने वहाँ भी राग द्वेष हो रहे हैं। ये कर्म की ओर से हम राग द्वेष को प्रूव कर सकते हैं और राग द्वेष कर रहे हैं इसलिए कर्म पुराने कर्म का उदय भी प्रूव कर सकते हैं। ऐसे टाइम ये तीनों बातें हैं तो एक है तो दूसरे की सिद्धि भी सहज हो जाती है। हाँ, कारमाण का युग रहे विग्रह गति है ना, वहाँ हमने देखा था पहले। देखो नीचे के दो लाइन, जो जो एक मोड़ लेकर परभव जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहरक रहता है और दूसरे समय में आहारक होता है। अनाहरक अवस्था में नौकर्म आहार नहीं होने पर भी देखो इंद्रदेव कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है, कर्म का ग्रहण वहाँ भी चल रहा है। दो मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव दो समय अनाहरक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है। तीन मोड़ वाली विग्रह गति में जीव तीन समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होता है। नौकर्म आहार करके यानी नौकर्म का ग्रहण करके आहार यानी ग्रहण जीव नया शरीर धारण करता है, शरीर निर्माण होता है उसे जन्म कहते हैं। हॉस्पिटल में प्रसूति होने पर बच्चे का जन्म हुआ कहना तो लौकिक व्यवहार का कथन है। तो ये जन्म कब हुआ, आयु तो तभी शुरू हो गई जब उसने विग्रह गति के पहले समय से, परंतु जन्म यानी शरीर का संयोग को हम जन्म कहेंगे। तो जन्म कब, जब वो नौकर्म आहार को ग्रहण करेगा पहले ही समय से तभी से उसको हम जन्म कहेंगे, वो उसका जन्म हुआ। और जब कहते ना आठवें साल में केवल ज्ञान हो सकता है तो वहाँ से आयु गिनते हैं जन्म की। और आयु जो गिननी है वो तो विग्रह गति के पहले समय से गिनेंगे, जन्म गिनेंगे तो नौकर्म आहार का ग्रहण का काल गिनेंगे। तो उसने इतनी आयु बांधी है तो वे विग्रह गति के भी सारे समय उसमें गिनेंगे, वो भी समय का एक समय का इधर उधर फेर नहीं होगा। देखो ये केवल ज्ञान में जानी हुई बात है, ऐसा वहाँ तो समय समय का भी हिसाब है सारा। देखो तो कोई जीव मर गया ऐसा हम कहते हैं तब असल में क्या होता है। देखो जब हमको मरण का भय क्यों इतना लगता है, क्योंकि उस संबंधी हम अजान हैं। जब पता चलता है फिर एक समय भी जीव इधर उधर भटकता नहीं, मरता ही नहीं है। हमने पहले देखा था जीव उसे कहता है जो जीवन के युग जीवन से युक्त है। तो जीव कहते हैं हम ये तो पक्का नक्के करें कि उसको जिसको मरण नहीं होता उसको जीव कहते हैं। तो हम जीव है क्या, अजीव है, जीव है तो अजीव भी मरता होगा कि नहीं होगा, मरता होगा। अजीव तो मरा हुआ ही है उसमें जीव ही नहीं है और उसका नाश तो होता नहीं है। हमने देखा था अजीव का भी नाश नहीं होता ना जीव का नाश होता है, दोनों ही बने रहते हैं। जिस शरीर का संयोग है उसका वियोग हुआ फिर वहाँ नया शरीर धारण किया, ऐसा कब तक होगा, जब जीव मुक्त हो जाएगा सिद्ध होगा तो वो सारे परमाणु तो यहीं पर रहेंगे, वो परम औदारिक वाले भी अरिहंत भगवान के, और जीव अकेला एक शुद्ध स्वरूप में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा। तो नाश हुआ क्या, वो रह गया, बोलो जीव है क्या, उसका नाश हुआ है। पहले तो संसार में अन्य अन्य शरीरों के शरीर धारण करता रहता था, अब मुक्त हुआ तो भी फिर जीव तो है ना, अनादि से था आज भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। तो हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा यही तो मूल सिद्धांत है और इसी को पक्का करना है, क्योंकि हमने अपना अस्तित्व तो माना ही नहीं, यही मैं हूँ मानकर फिर जब इसको छोड़ने का समय आता है तो अरे मैं ही मर गया मेरा ही नाश हुआ ऐसे विलाप करता है। कितनों को तो नींद आती है, अरे मेरा मरण होगा मेरा मरण होगा मेरा मरण होगा क्या होगा क्या होगा। तो उस संबंधी अगर हम ज्ञान भी कर लेते हैं आगम से तो कितना हमको आकुलता कम हो जाती है। देखो तो कोई जीव मर गया ऐसा हम कहते हैं तब असल में क्या होता है, पुराने शरीर के सभी परमाणु छोड़कर जीव अन्यत्र परभव की ओर गमन करता है। जाते समय शरीर स्त्री पुत्र जमीन जायदाद मित्र परिवार ऐश्वर्य अधिकार सब कुछ यहीं पर छोड़कर चला जाता है। कुछ ले जा सकता है क्या? थोड़ा सा बैंक का डिपॉजिट कुछ भी, तो कुछ नहीं जाएगा यहाँ का इसके साथ। तुम पूछोगी कुछ तो साथ में ले जाता होगा कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, ऊपर की सभी बातों संबंधी मोह राग द्वेष करके उपार्जित किए हुए बांधे हुए सभी कर्म साथ में ले जाता है। पुत्र को तो यहीं पर छोड़ जाता है, परंतु पुत्र के लिए जो जो खोटे सच्चे काम किए होंगे, जो जो राग द्वेष के परिणाम किए होंगे, उसके कारण जो कर्म बंधे उसको साथ में ले जाए। यह प्राप्त शरीर छोड़कर कारमान और तेजस शरीर के साथ जीव विग्रह गति में जाता है। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है और जितनी आयु बांधी हो उतने काल तक हर समय आयु कर्म के परमाणु उदय में आते रहते हैं। थोड़े 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 जितना भी समझो आयु के इतना गठोड़ा बांध लिया सारे कर्म परमाणु का जत्था, तो उसमें थोड़े 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 निकलते 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 जितनी आयु बांधी है वो अंतिम समय में सारे परमाणु खिल गए। फिर जो नया और अगले भोग की आयु बांधी है उसका उदय चालू हो जाए। तो ऐसा हमेशा रहता है। ये आयु पूरी हुई, ये पूरी होने के पहले जो नियम रूप से अगले आयु बांधेगा, कौन नहीं बांधेगा? जो शर्म शरीर है, जरा शांति से सोचो तो सही कि बच्चे के जन्म पर हर्ष और किसी के मृत्यु पर हम शोक क्यों करते हैं? ये तो देखा जाता है ना, कोई मरा तो कितना शोक हो जाता है घर। मरने वाले के लिए हम शोक करते हैं या हमारे संयोग की इष्टता नष्ट हुई इसलिए शोक करते हैं, या अन्य लोग क्या कहेंगे सोचकर प्रदर्शन के लिए शोक करते हैं? क्या इन कषायों की निरर्थकता ख्याल में नहीं आती? हाँ कषाय भी सार्थक है, परंतु वे मात्र कर्म बंधन करने में ही सार्थक है। वर्तमान में शोकादि संकलेश परिणाम करने पर जो कर्म बनते हैं उनके उदय में पुनः वैसे ही प्रसंग भविष्य में प्राप्त होते हैं। वर्तमान में हमने तीव्र शोक किए तो कर्म बन गए, कुछ काल के बाद उनका जब उदय होगा, जब उनकी स्थिति पूरी हो जाएगी, तब उनका उदय होगा ना, वो शोक के कारण जो कर्म बांधे हैं, तो उस समय ऐसे ही कुछ संयोग हो कि उस समय भी हमें शोक करने पड़े हैं, जीव करेगा। तो अब उस समय जब अभी पहले तो किसी ने शोक के परिणाम करके कर्म बांधे थे, अभी समझो है वो उदय में आने योग्य है और उस समय में उसने तत्व ज्ञान पढ़ा, उसको पता चला रहे ये तो व्यर्थ है सारा, और उसका मोह भी मंद हुआ और उसके शोक उसके कारण वो शोक में भी जो अनुभव तीव्र था वो भी घट गया। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र से ये सारा बराबर सुन लिया कि ये तो कर्म का उदय है, मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसा ऐसा विचार करने के कारण जो पूर्व में तीव्र कर्म बांधा था वो भी मंद होकर उदय में आया। थोड़ा बहुत शोक भी होगा मगर वो उसमें अभी जुड़ेगा नहीं, अरे ये शोक परिणामों से भी मैं भिन्न हूँ ऐसा वो उसी समय सोचेगा भी जानेगा। तो यही एकमात्र तरीका है, नहीं तो परिणाम तो करते रहेगा, उसका उदय भी आते रहेगा और फिर उसमें जुड़ेगा, फिर वो ऐसा वो चक्कर चलता रहेगा। हर समय नवीन कर्म का बंध होता है और स्थिति पूर्ण होने पर वे सब एक साथ एक समय में उदय को प्राप्त होते हैं, ऐसा यदि तुम्हारा सोचना होगा तो वह बिल्कुल गलत है। यानी अभी हमने कुछ कर्म बांधे, अभी परिणाम किए और कर्म परमाणु बांधे, समझो मान लो कि 1,00,000 कर्म परमाणु बांधे अभी, तो उसकी स्थिति पूरी होने के बाद वो लाख के लाख एक साथ में उदय में आते हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो कैसा होता है तो उसके लिए अभी देखते हैं। जैसे किसी ने 1,000 कर्म परमाणु बांधे हैं और उसकी 100 साल की स्थिति होगी, तो 100 साल पूर्ण होने पर हजार परमाणु एक साथ एक समय में खिरते होंगे, ऐसी कल्पना झूठी है। हम कहते वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंद है, यानी 70 कोड़ाकोड़ी के बाद में एक समय में सारा उदय में आता होगा, ये ऐसी कल्पना झूठी है। तो सच क्या है उसे अब पढ़ते हैं। तो सच बात क्या है इसे जानने की तुम्हें उत्सुकता होगी तो सुनो। बंद होने के बाद कर्म परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं, विवक्षित काल तक उदय में नहीं आते, उसे आबाधा काल कहते हैं। देखो क्या कहा, कर्म बंद हुआ यहाँ, शास्त्र में हमेशा वर्तमान समय नीचे दिखाते हैं और भविष्य के ऊपर दिखाते हैं, नीचे से ऊपर उसको पढ़ना। तो समझो यहाँ पर किसी ने विशिष्ट राग द्वेष के परिणाम किए और कर्म बांधे, तो कर्म बांधने के बाद उसका उदय यहाँ से शुरू होगा भविष्य काल में, वहाँ तक उसका एक भी परमाणु नहीं खिरा, यानी उसका उदय हुआ ही नहीं है उतने काल के लिए, उसको आबाधा काल कहते हैं। उसका कोई फल मिलेगा नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे और उसके बाद हर समय में थोड़े 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 कर्म परमाणु उदय में आते रहेंगे। एक साल बांधने में सारे इकट्ठा गट्ठा इतना बांधा, कितना बांधते हैं एक समय में, एक समय में कितना बंद होता है, कुछ भी कोई भी जो बंद होता है एक समय में वो कितने परमाणु आते हैं, अनंत। उसको क्या कहा था हमने, उसको नाम दिया था समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध। तो ये जो इकट्ठा इसने बांधे तो इकट्ठे उदय में नहीं आते, तो कैसे आते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। यानी समझो कोई कर्म बांधे तो वो 100 साल तक उदय में नहीं आए और बाद में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक हर समय उदय में आए। जैसे मिथ्या तो कर्म बांधा, किसी ने तीव्र मिथ्या तो 70 कोड़ाकोड़ी सागर वाला बांधा, तो 7000 साल तक उसको कोई कर्म उदय में नहीं आया, उसके बाद हर समय हर समय हर समय हर समय कब तक, 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक कंटिन्यूअस उसका उदय चल रहेगा, चलता रहेगा। और खाली इसी का नहीं, ये तो एक समय में बांधे हुए कि डिस्ट्रीब्यूशन हुए, दूसरे समय में और अनंत बांधे वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तीसरे समय में और बांधे वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और अभी जो उदय चलेगा वो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होकर उस समय में कौन कौन उदय में आएगा, सारे का सारा का फल एक साथ मिलेगा। जैसे बैंक में हमने डिपॉजिट रखा, कोई 10 साल पहले रखा था, कोई 4 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई गए महीने में रखा था, परंतु आज जिसकी जिसकी मैच्योरिटी पूरी होती है वो सब हमको इकट्ठा मिलेगा। वैसे दीपाली को हंसी आती, हमने अलग अलग समयों में बांधे थे, जिसका जिसका उदय अभी है उन सबका फल हमको इकट्ठा मिल रहा है। ये इसको और समझाऊंगी मैं, अभी तो आबादा काल दिखाए। आबादा काल पूर्ण होते ही उस विवक्षित कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है। अब यहाँ से उदय शुरू हुआ ना, पहले तो आबादा था, आबादा में तो उसका उदय ही नहीं था, बाद में हर समय उदय 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 चलता रहेगा। ये यहाँ से लेकर 7000 साल के बाद से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक ये सारा उसका उदय काल कहलाएगा उस विशिष्ट कर्म का। कोई समझो मान लो 1000 साल का ही बांधी थी और एक साल में उसका उदय चालू हो गया, तो वहाँ से लेकर पूरे 1000 साल के जितने समय उसने, हर एक समय पर उसका उदय चालू रहेगा, उसको कहेंगे हम उदय काल। तो दो काल देखे, एक आबादा काल और उदय काल। तो जब स्थिति बांधी है यहाँ, कर्म की स्थिति बांधी है, तो पूरी स्थिति के आबादा काल प्लस उदय काल ये मिलाकर उसकी स्थिति होती है। ये स्थिति कैसी की हमने, जो अंत समय में जो कर्म परमाणु खिरेंगे वो कब खिरेंगे, वो समझो मान लो ये 1000 साल बाद खिरने वाला है, वो अंतिम निश्चित, परंतु कुछ परमाणु तो एक साल में खिरने लगे। तो ये जो मैक्सिमम है उसकी अपेक्षा से हम कहते हैं वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म है, अंतिम स्थिति, वो स्थिति अधिक उसकी, अधिक स्थिति वाले कर्मों की अपेक्षा हम कहते हैं। परंतु उसका फल कब से मिलना शुरू हुआ, ये 7000 वर्ष के बाद ही वो सत्तर कोड़ा कोड़ी वाले का हमको फल शुरू हुआ। कंटिन्यूस उसका फल इतने साल तक भोगना पड़ेगा। देखो हम कोई भी एक परिणाम करते हैं राग द्वेष के, तो उस समय तो हम दुखी होते ही है। वो समय एक समय का राग देखो तो एक समय का राग है तो एक समय के लिए हम दुखी है ही है, परंतु उस एक समय के कारण जितने कर्म परमाणु बंधे हैं वो कंटिन्यूस कितने साल तक उदय में आते रहेंगे, उतने काल तक हर समय हम दुखी हो रहे और हर समय और नया को हम बंद कर ही रहे, इसलिए दुख नहीं मिटता। कभी कभी बाय चांस ऐसा होता है कि कम उसका उदय है, सब कम टोटल जो कम आती है तो हम अपने को सुखी अनुभव करते, परंतु वो अधिक काल तक नहीं। बाय चांस जैसे अभी यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से ट्रैफिक, बाय चांस कभी ऐसा होता है एकदम शांति का कुछ ट्रैफिक नहीं है, कितने काल तक के लिए, परंतु यहाँ ऐसा कभी होता ही होता नहीं कि कर्म का उदय ही रुक गया, हर समय तो उसका उदय चलता ही रहेगा। कभी कभी मंद होता है, कभी कभी तीव्र होता है, बाय चांस ऐसा हो जाता है कि कभी कभी यहाँ भी मंद हो जाता है और जीव का भी उसमें उपयोग लगता है तो कार्य होने का संधि उसका अवसर आ जाता है। जैसे अभी हमारा परिणाम इसमें है, तत्व की रुचि है हमें, कभी मोह भी मंद है और तत्व ज्ञान के कारण वो और मंद मंद होता जा रहा है। मोहन्य कर्म में ऐसी अनुकूलता है अपने लिए कि हम अगर तत्व का अभ्यास करते हैं तो पहले के जो कर्म है सारे ही आठों ही कर्म, आयु को छोड़कर अन्य सातों ही कर्मों में स्थिति तो हमने देखी थी, सारों की ही स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है और उसमें भी जो अनुभव है वो हर समय अनंत गुणा घटता, अनंत गुणा घटता, यानी अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग हो रह जाता है, वो कर्म की ओर देखना भी नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ विशुद्धि बढ़ती होती, अपना स्वरूप का विचार हो जाता है तो उसकी विशुद्धि। अभी कोई हिंसा के परिणाम नहीं हमारे, तो हम तो अपने आत्मा का स्वरूप देख रहे हैं और ये कर्म के बारे में भी हमारे जो विचार चल रहे हैं ना, ये तो अपाय विषय धर्म ध्यान भी है, विपाक विषय धर्म ध्यान भी, विपाक विषय ने कर्मों का कैसा बंद होता है, कैसा फल मिलता है, उस संबंधी विचार करते विचार करते हैं। अभी हमें ख्याल है ना, अरे हम अपनी भूल से इतना सारा कर रहे हैं, तो ये अंदर से ख्याल आता है। अपाय विषय ने उसका हम कैसा अभाव करें, कर्म का अभाव का उपाय क्या है, इस संबंध में भी तो विचार चल रहे हैं, तो भी वहाँ इतनी सारी कर्मों में मंदता होती चली जाती है। आत्मा का डायरेक्ट अनुभव करते हैं तो उसमें तो और ज्यादा हमें निर्जरा हो जाती है, परंतु तत्वों का विचार करने से भी इतनी सारी बातें बनती है। मोक्ष मार्ग में प्रकाशक में लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, तो ये सारी बातें ऐसी अपने आप उसमें कर्मों में बनती है। हमें तो ये तो हम कर्मों का ज्ञान करा रहे कर रहे, ज्ञान करने से अपना और कर्म का भिन्न अस्तित्व, भिन्न स्वरूप, भिन्न लक्षण अपने ख्याल में आने के कारण भेद विज्ञान को हम बल मिलता है। देखो अभी कुछ ऐसे इसमें से शब्द आएंगे क्योंकि अभी तो आप कल के बाद तो परसों से ये आप चार पांच दिन चले जाएंगे, तो उसमें ये जो निषेध क्या है, स्पर्धक क्या है, इसको पढ़ेंगे तो ये आगे वाला भी आप पढ़कर ये पुस्तक समाप्त कर सकते हैं। आबादा काल पूर्ण होते ही उस विवक्षित कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है। विवक्षित यानी पर्टिकुलर, एक समय में बांधे हुए कर्म के कुछ परमाणु पहले समय में उदय होकर खिल जाते हैं। एक समय में खिलने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ये डेफिनेशन है निषेक की। हमने अभी देखा था कि आबादाकार पूर्ण होने पर कुछ कर्म परमाणु पहले समय में खिल गए, उसका उदय हुआ दीपाली। अभी आबादा काल के बाद ये कर्म परमाणु है ना, ये इनका इतना कर्म परमाणुओं का समूह पहले समय में खिल गया, उतना उसको उतने परमाणुओं का फल मिला। तो ये एक समय में जितने परमाणुओं का समूह खिल जाता है उसको एक निषेक कहते हैं। तो एक एक निषेक में भी बहुत सारे परमाणु हैं। तो ये जो निषेक है दूसरे समय में और एक निषेक खिलता है यानी निकल जाता है, उदय में आता है, उसी को खिर जाना, उसी को निर्जरा होना, उसी को उदय में आना, ऐसा कहते। अभी तो पहले समय में भी खिर गया, दूसरे समय में एक निषेध, तीसरे समय में एक निषेध, चौथे समय में एक निषेध, तो उसमें संख्या उतनी होती होगी कि कम ज्यादा होती होगी। देखो अभी क्या लिखा है, परंतु दूसरे निषेध के परमाणु उनकी संख्या पहले निषेध के परमाणु उनसे कम होती है। मैंने भी क्या हुआ, पहले समय में बहुत सारे परमाणु खिल गए, दूसरे समय में उससे कम, तीसरे समय में उससे कम, ऐसे कमती 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 बिल्कुल कम हुए। ये ऐसा एक समय में जो कर्म बांधे थे उसके पहले समय में जो निषेध है उसमें परमाणु बहुत ज्यादा है, दूसरे समय के निषेध में परमाणु उससे थोड़े कम है, थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम। इसको कहते हैं निषेध रचना। बंद यहाँ हुआ, बंधने के बाद आबादा काल में कोई कर्म का उदय नहीं था, उसके पश्चात एक एक समय में थोड़े 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 परमाणु खिरने लगे। पहले समय में जो निषेध यानी परमाणुओं का जब था समूह उदय में आया उसको हमने पहला निषेध कहा, तो पहले निषेध में परमाणु सबसे अधिक है, दूसरे में कम 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 कम, अंतिम में सबसे कम परमाणु है। इसको हम कहेंगे निषेध रचना। वो भी कैसी, स्थिति संबंधी, स्थिति बांधी है ना, तो इस स्थिति में इस तरह से कर्म निकल जाने वाले। ये अपने आत्म प्रदेशों में ऐसी कोई फिगर या रचना नहीं है, यहाँ हमने उसका चार्ट बनाया। आप वो क्रिकेट का स्कोर देखते हैं ना, क्या देखते हैं, ऐसा 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 फिर कम फिर ज्यादा फिर कम फिर कम फिर ज्यादा, तो इसकी क्या होता है, अरे इसने पहले ओवर में उसने इतने रन किए फिर इतने किए फिर इतने किए फिर इतने किए, तो वैसे तो कुछ वहाँ तो कुछ रचना ही है। वैसे ये आत्म प्रदेशों में तो ऐसा कुछ वहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये हमने चार द्वारा उसको पुटअप किया है। हम देखते ना वो रुपए की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, फिर यहाँ ड्रॉप हो गई, देखते ना पेपर में, तो हमारे तिजोरी में क्या ऊपर से नीचे आते हैं, पैसे क्या होता है, क्या होता है वहाँ है, अभी उसकी वैल्यू कम हो गई। वैसे यहाँ उसकी कितनी स्थिति है, तो ये पहले समय में खिलने वाले इतने परमाणु है, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, इसको हम निषेध रचना कहते हैं। ये चार द्वारा उसको समझाने का तरीका है, ख्याल आया इतना। तीसरे समय में उदय में आने वाले निषेक में उससे भी कम परमाणु होते हैं। इसी तरह उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक अगला अगला निषेकों में परमाणुओं की संख्या हीन होती जाती है, इसे निषेक रचना कहते हैं। कर्म की जितनी स्थिति बंदी हो उस स्थिति के अंत समय तक हर समय एक एक निषेक उदय में आता रहता है। देखिए हमने देखा था आबादा काल पूरा होने के बाद एक एक निषेध खिलना चालू हो गया, वो कब तक खिलेगा, जब तक उसकी स्थिति है, जो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर वाला मिथ्यात्व है उसका अंतिम निषेध कब खिलेगा, वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर हो जाने के बाद उस समय वो अंतिम निषेध खिलेगा। आयु बिना अन्य सात कर्मों की स्थिति ये चार द्वारा समझाइए। अभी यहाँ आड़ा समझाया क्योंकि हमें वो आदत है ना, हम ऐसे पुटअप करते हैं, वो क्रिकेट का है या अन्य कोई भी है, तो इसलिए यहाँ ये अपने स्टाइल से पहले हॉरिजॉन्टल समझाए कि यहाँ पर बंद हुआ, बंद होने के बाद यहाँ इतने काल तक कुछ उदय हुआ नहीं, तो इसको हमने आबाधा काल का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उदय चालू हो गया, तो उदय चालू होगा तो पहले समय में बहुत परमाणु, फिर थोड़े कम फिर कम कम, ऐसे आड़ा समझा, ये समझाने के लिए, क्योंकि हम इसी तरह से फिगर समझाते अपने गणितों में या अपने रेगुलर रूटीन में, इसलिए यहाँ समझाने के लिए आड़ा रखा था, परंतु शास्त्र में ऐसा नीचे से ऊपर की ओर समझाएंगे हमेशा। आयु के बिना, देखो पहले क्या लिखा फिगर के ऊपर, स्थिति इज इक्वल टू आबादा काल प्लस उदय काल। देखिए ये पूरी स्थिति है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें क्या क्या है, आबादा काल प्लस उदय काल, ये सात कर्मों के बारे में है। आयु कर्म के बिना शेष सात कर्मों की स्थिति में से आबादा काल छोड़कर जो काल रहता है उसे उदय काल कहते हैं। यानी ये जो पूरी है वो स्थिति है, इस स्थिति में से आबादा काल को छोड़ दो तो क्या बच गया, उदय काल। उदय काल यानी हर समय, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए रुक गया उदय, ऐसा नहीं होता, हर समय उस कर्म का उदय होता रहे उसको कहेंगे उदय काल। उदय काल के प्रत्येक समय में उस विवक्षित एक समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है। ये अनंत की हमें कल्पना नहीं आती ना, एक समय में इतने अनंत बंधे कि इतने सागरों तक हर समय उदय होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे। वो आगे समझाया, आयु को अलग समझाते हैं, पहले इसको समझ ले, ये पक्का हुआ तो फिर अगली बात समझाते हैं। देखो कैसी अजब बात है, जीव एक समय में जो मोहराग द्वेष परिणाम करता है उसके निमित्त से कर्म बनते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु बनते हैं और उनका उदय निरंतर कितना सैकड़ों हजारों लाखों सागरों वर्ष तक होता रहता है एक समय के बंधे हुए कर्म। यह तो एक समय में बंधे हुए कर्म की बात है, इसी प्रकार हर समय हम कर्म का बंध करते हैं और उनका प्रत्येक का उदय भी अनेक सालों तक चलता रहता है। भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल यानी मैच्योरिटी चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। इसे अभी हमने समझा था, यहाँ हमने आयु कर्म को छोड़कर बात की थी, क्योंकि आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उतना ही उसका उदय काल होता है। ये पहले ही समझ लो, हमने आयु तो बांधी पूर्व भाव में, अभी ये किसी की मनुष्य आयु है, ये मान लो उसके अंतिम वंशज में या कहीं भी, यहाँ उसने नई आयु बांधी, बंध तो यहाँ पर किया, कितनी आयु बांधी, मान लो 100 साल की बांधी, तो 100 साल का उदय कहाँ से शुरू होगा, ये आयु समाप्त होते ही यहाँ पर समाप्त हुई तो अगले ही समय में, ये इसका काल है और ये इसका अगला समय, तो अगले समय से ही आयु का यहाँ उसकी स्थिति बांधी, कितनी 100 सालों की, तो 100 साल का उदय कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो उसको कितने समय, वो कितने साल तक उसका उदय चलता रहेगा, 100 साल तक, यानी जितनी स्थिति बांधी है उतना ही आयु का उदय रहेगा। अन्य कर्मों में आबादा को छोड़कर उदय काल था, आबादा में उदय नहीं था, बाद में उदय काल कितना रहेगा, समझो 1000 साल की उसने स्थिति बांधी है तो उसमें उदय काल कितना रहेगा, वो एक साल छोड़ दो आबादा में तो 999 साल उसका उदय काल रहेगा। हालांकि और आयु में जितनी स्थिति बांधी है उतना ही उदय है, तो आयु के लिए आबादा कौन सा, तो यहाँ बंद हुआ, अभी हमारी वंशज आयु बाकी और हमने बंद किया अगली आयु का, और तब तक जो उसकी बची हुई मनुष्य आयु है वो उसका आबादा काल हुआ। ये आयु में और अन्य कर्मों में फर्क है, यह सारा समझा है फिगर से लेकर, बहुत हेवी हो रहे हैं क्या, हाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देखिए अभी ज्ञानावरण में कंबाइन थी जाएगी, अभी ज्ञानावरण का फल मिल रहा है हमें, हमारी विशिष्ट इतनी पात्रता है, ज्ञान का उघाड़ अपने कारण है, परंतु कर्म में कितना उघाड़ उदय चल रहा है उसका, सूक्ष्म कितना है, कोई भी कर्म की बात हो तो एक समय बंदे का इतना है, दूसरे का इतना, ये सार आता है। सारी की टोटल कितनी है, समझो मान लो इतनी हो गई सारी की टोटल, तो ये हमें फल मिल रहा है। अभी साता असाता में आप गिन लो तो जल्दी ख्याल में आएगा। साता वेदीय कर्म का हमने अलग अलग समयों में बंद किया, अलग अलग समयों में बंधे हुए जिसका जिसका उदय आज हमें प्राप्त है, उस सबका कंबाइंड फल हमें मिल रहा है। क्या कभी विशिष्ट अनुकूल परिस्थिति है? ये फल एक समय में बंधे हुए का नहीं, अलग अलग समयों में बंधे हुए का। अभी बीच में और कुछ रोग पैदा हुआ तो असाता भी अलग अलग समयों में बंधा था, उसका भी किसी का उदय होगा तो उसका भी फल मिलेगा, वो भी कंबाइन मिलेगा। ऐसे नाम में गोत्र में सारे में समझ, आयु का ऐसा नहीं होता है। आयु तो कभी कभी बनती है और उसकी जो आयु उसका उदय रूप है उसी का फल मिलेगा, इसलिए आयु को अलग रखा है। आयु में ऐसा कोई कंबाइन का सवाल ही नहीं है, एक ही आयु बांधते हैं, वो भोगने के बाद पूरी होने के पहले आंखा में बांधते हैं, पहले टाइम एक ही आयु बांधते हैं और उसका ही उदय चलता रहता है। अन्य कर्मों में अभी मिथ्यात्व है, कितना तीव्र मिथ्यात्व अभी उदय में आ रहा है, अलग अलग समयों में बांधा है, उसका जिसका जिसका उदय चल रहा है अभी, उन सारे का कंबाइन कितना है, कितनी डिग्री हुआ उसकी, तो उतना उसका उदय है। हाँ, वो उदय की अपेक्षा निषेध उसको कहेंगे। हाँ, ये एक समय में बंधे हुए स्थिति ये जो है ना, वो स्थिति की अपेक्षा एक एक समय में बंधे हुए की ये निषेध रचता है। अभी अलग अलग समयों में बंधे हुए हैं, सत्ता के जो निषेध है, सत्ता के निषेध के अंदर पड़े हुए सारे कर्मों के निषेध कितने हैं, तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हर समय में हम बांध रहे हैं ना, वो सारों के इकट्ठा एक समय में जितना निषेध उदय में आएगा, ये तो एक समय में बंधे हुए का यही निषेध है। अन्य किसी समय में बंधे हुए का ये निषेध है, अन्य किसी समय में बंधे हुए का ये निषेध है, ये सारे को मिलाकर उदय में आने योग्य एक निषेध कहलाएगा। हाँ, उसको निषेध कहते हैं। अभी ये समझाने के लिए हम एडजस्ट नहीं, कम्बाइन थे जाएंगे, और ऐसा नहीं कि अच्छा और बुरा एडजस्ट थे गया, ऐसा नहीं, अच्छा का भी फल मिलेगा बुरा का भी उतना ही फल मिलेगा।
अभी आपके पास बहुत पैसा है, बीमार है, अनुकूलता अधिक है, लेकिन वहाँ बीमारी है, सब अच्छा है, लेकिन बीमारी की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, ऐपन पकवान है, बहुत पैसा है लेकिन हाथ से जिस तो ये नहीं खा सकते।
यानी अच्छे का भी अच्छा फल और बुरे का भी बुरा फल, वो नलीफाई नहीं होता, ये मूल लेना। हाँ, वो एडजस्ट ऐसा नहीं होता उल्टा सुलटा, यानी जो जिसका है ना, हमने आर भेद किए थे, फिर उसके उपभेद किए थे, तो उसके उसके खाते में जितना जाएगा उतना, असाता का असाता में इकट्ठा होगा, साता का साता में इकट्ठा होगा, साता असाता मिलकर वो ऐसा अंदर नलिफा नहीं होगा, वो सारे का जितना जो है उसका फल मिलेगा। ऐसे हम सुबह से शाम तक जैसे परिणाम करेंगे वैसे गति भी बनती रहती है, कभी मनुष्य गति बांधते, कभी सीरियंस गति बांधते, कभी नर गति भी बांधते, जैसे नारकी जैसे बिहेवियर करते हैं, तो ये सारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, और जब जिस आयु का उदय वैसे वैसे गति का भी वहाँ उदय चालू हो जाता है। ये सारा ही जो जो परिणाम करते हैं उसका फल निश्चित है। अकेले हम आयु संबंधी परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं, परंतु अन्य भी सारे ही कर्म बांध रहे हैं निरंतर, और उसका फल भी मिलता रहता है। तो इसमें से छूटने का मार्ग ढूंढना है, नहीं परिणाम अच्छे करो और अच्छे कर्म बांधो, ये तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ बंद की रुचि है। बंद की रुचि यानी जिसको शुभ में या शुभ के फल में जिसको अभी रुचि है संयोग में, देखो हमें क्या लगता है अच्छे संयोग मिलने का, तो उसने क्या माना ये किसका फल है, शुभ कर्म का फल है। तो जिसको संयोग में रुचि है, अच्छे संयोग अच्छे लगते हैं, उसको शुभ कर्म के बंधन के फल में रुचि है, बंध के फल में रुचि है, जिसको बंध के फल में रुचि है उसको बंध भी अच्छा लगता है। यानी ये सारा ही उसका तत्वों के बारे में मिथ्या अभिप्राय है।
यानी जिसको बंध अच्छा लगता है उसको निर्बंध भगवान आत्मा पसंद है,
यानी जिसको अपने अबंध स्वरूप का ख्याल आता है, अपने आत्मा की रुचि हो जाती है, उसको संयोग की रुचि अपने आप कम हो जाती है, नहीं नहीं अभी मुझे को नहीं देखना संयोग उनके और ऐसा नहीं होता। भले वो उसके संयोगों में लाखों रुपए पड़े हो या वो निर्धन हो, दोनों की उसको रुचि नहीं। ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास है तो चलो मुझे फेंक देना है, मुझे सबको दे देना, ऐसा भी नहीं। वो पड़े रहे या नहीं रहे, उसके प्रति जो ममत्व भाव है वो ही उसका खलास हो। देखो अगला पैराग्राफ 25 पेज से। जैसे किसी व्यक्ति ने 60वें साल में परमों की 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी, उसकी वर्तमान आयु 90 साल की है। वर्तमान आयु को भुज्यमान आयु और आगामी बंधी हुई आयु को भुज्यमान आयु कहते हैं, याद है ना, पहले बताया तो था। इस व्यक्ति के 60वें साल से 90 साल तक भुज्यमान आयु का उदय चलता रहेगा। अभी उसने बांधी ना, मनुष्य आयु का उदय है उसका। इस आयु का अंतिम निश्चय फिरते ही मरण होगा और अगले समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का उदय प्रारंभ होगा। इस जीव ने 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी है, इसलिए निरंतर 10,000 वर्ष तक इसके आयु के निषेध फिरते रहेंगे। वो नरकायु है ना उसकी बांधी हुई, उसके आयु के निषेध फिरते रहेंगे। यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि क्या बुद्धिमान आयु में आबाधा काल नहीं होता, यानी जो आयु बांध रहे हैं उसमें आबाधा काल नहीं है क्या? होता है। नूतन आयु बंधने के समय से वर्तमान आयु का शेष बचा हुआ काल नूतन आयु का आबाधा काल है। हमारे ऊपर बताए हुए उदाहरण में 90 वर्ष की आयु वाले मनुष्य ने 60वें वर्ष में नरकायु बांधी, इसलिए उसकी नरकायु का आबाधा काल 30 वर्ष है। बचे हुए मनुष्य आयु का काल उसका आबाधा काल। आयु कर्म की स्थिति और उसका उदय काल इक्वल होता है। ये अभी जो मैंने स्लेट पर समझाया था वही नीचे लिखा है। देखो ये भुज्यमान आयु में बीच में वन थर्ड में बंद किया, उसके अगले समय में बुद्धिमान आयु का उदय चालू हो जाएगा। तो वो बंधने के बाद जब तक उदय नहीं होता है तब तक उसकी वो आबाधा काल है। विग्रह गति के पहले समय से उसका नरकायु का उदय प्रारंभ होगा। मरण के पूर्व जिसे हम मनुष्य कहते थे वही जीव अब नारकी नाम से पहचाना जाएगा। पहले हम उसको मनुष्य कहते थे और यहाँ से कोई तीरियंच होगा तो हम उसको तीरियंच कहेंगे, कोई देव होगा तो हम उसको देव कहेंगे। जीव तो वही रहा। नरकायु का उदय निरंतर 10,000 वर्ष चलता रहेगा। जीव भविष्य के एक ही भव की आयु बांधता है, पहले हमने देखा था इसको। आगामी भव में उसके बाहर आने वाले भव की आयु बांधता है। 7 कर्मों का बंधन निरंतर होता है, परंतु आयु कर्म का बंधन कभी कभी होता है। इस बात की हमने चर्चा की थी, वह बंधन किस वक्त होता है उसे उदाहरण देकर समझाऊंगी। वो हमने देखा था ना, वंतर आयु रहती है तब उसका बंधन होता है। वर्तमान यानी भुज्यमान आयु के त्रिभाग करना, यानी तीन भाग करना, उसमें से दो भाग आयु बीत जाने पर यानी अंतिम त्रिभाग शेष रहने पर जो एक अंतर्मूर्त काल है उसमें नूतन आयु का बंध होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी है, बंधेगा ये ऐसी बात नहीं। इस काल को अपकर्ष कहते हैं। यदि इस पहले अपकर्ष काल में आयु का बंध न हुआ तो शेष बची हुई आयु का दो तिहाई काल बीत जाने पर दूसरा अपकर्ष काल होता है। उस वक्त भी आयु न बंधी हो तो तीसरे अपकर्ष काल में बंधेगी। इस तरह से अधिक 8 अपकर्ष काल होते हैं। इन 8 ही बार आयु का बंधन न हुआ तो मरण के पूर्व अंतर्मूर्त काल में आगामी आयु का बंध होता ही है। आयु बांधना यानी आगामी जिस भव में जाने वाले हो उस आयु कर्म के परमाणु आकर उनका बंध होना। एक अंतर्मूर्त काल में इतने सारे परमाणुओं का ग्रहण होता है। किसी जीव के एक अपकर्ष काल में आयु बंध होता है, किसी के दो अपकर्ष कालों में मिलाकर, किसी के 3, 4, 5, 6, 7 या 8 अपकर्ष काल में मिलाकर आयु का बंध होता है। परंतु इन जीवों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम होता है, यानी एक ही बार बांधने वाले जीव ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि 6561 वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य के 8 अपकर्ष कब होंगे, ये समझाने के लिए इतनी बड़ी फिगर ली है। आयु की गणना, वैसे इतने साल वर्ष वाला आयु वाला कोई जीव होगा कि नहीं होगा मनुष्य? हाँ सिद्धार्थ, इतनी बड़ी आयु वाला मनुष्य कोई होगा कि नहीं होगा? हाँ बराबर, चौथे काल में तो ये कर्म भूमि का मनुष्य लिया है ना हमने, वहाँ पर कर्म भूमि का मनुष्य लिया है। पहले दूसरे और तीसरे काल में तो यहाँ भोग भूमि थी, और भोग भूमि वालों की जो आयु है वो असंख्यात वर्षों की पल्लियों की है, और उनके अंतिम 6 महीने बाद के रहेंगे या 9 महीने बाद के रहेंगे तब उनकी आयु बनती है, नहीं उनको ये त्रिभागों में नहीं बनती, यानी पूरी आयु के त्रिभाग नहीं होते, वो भी आगे आई बात। ये कर्म भूमि के मनुष्य की जो उनकी बात है, देवों में भी 6 महीने बाकी है तब आयु बन गई, नारकी में भी ऐसा ही है। आयु की गणना जन्म से नहीं अपितु गर्भ से करनी पड़ेगी, इससे भी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो मनुष्य आयु की शुरुआत विग्रह गति के पहले समय से होती है, अतः उस समय से आयु नापनी पड़ेगी और उस हिसाब से उसके त्रिभाग करने पड़ेंगे। पहला अपकर्ष 2/3 यानी 4374 वर्ष बीतने पर और 2187 वर्ष शेष रहने पर, दूसरा अपकर्ष 729 वर्ष शेष रहने पर, यानी वो 2187 उसका सद्वंतर करना। अभी तीसरा अपकर्ष 243 वर्ष शेष रहने पर, यानी उसका वंथर वर्तन करते रहना। चौथा 81, पांचवा 27 शेष रहने पर, छठवा 9 वर्ष शेष रहने पर, सातवा 3 वर्ष शेष रहने पर, आठवा 1 वर्ष शेष रहने पर। ये यहाँ प्रूफ की मिस्टेक है, वो नए कॉपी में हमने सुधारी उसको, अभी जो अपनी आई थी ना वो अगली जो प्रति आई उसमें सुधारा है, वो शेष है ना वो बराबर नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के पूर्ण आयु के त्रिभाग होते हैं, अभी जो देखा हमने कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों के आयु त्रिभागों में इसी बढ़ती है, परंतु भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की आयु के 9 महीने शेष रहने पर उसमें 8 अपकर्ष होते हैं, ये 9 महीने के 8 अपकर्ष होंगे। देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंध प्रारंभ होता है और उसमें त्रिभाग होते हैं, यानी पहला अपकर्ष उनके 9 महीने शेष रहने पर, फिर दूसरा अपकर्ष 3 महीने शेष रहने पर, फिर 1 महीने शेष रहने पर, ऐसा ऐसा उसमें बनता है। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंध कब होगा क्या भरोसा, परंतु अच्छी आयु के चक्कर में मिथ्यात और राग द्वेष की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आयु सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है, स्वयं दुख रूप है। देखो ये बात हमारे ख्याल में ही नहीं आती, वो राग द्वेष के परिणाम इटसेल्फ दुख है, और फिर वो दुख के कारण रूप ऐसे कर्म को भी बांधते, इसलिए दुख के कारण भी कहा, दुख का मूल क्यों कहा, क्योंकि वो कर्म का मूल है, इसलिए कर्म बंधने का कारण है, इसलिए दुख का मूल कहा, और स्वयं दुख रूप का क्योंकि वो राग आदि प्रकट ये दुख दे, अभी वर्तमान में उसी से तो दुख हो रहा है, अभी कर्म बंधे है वो तो वर्तमान में दुख नहीं दे रहे हमको, कर्म तो कोई दुख देता ही नहीं है क्योंकि वो तो परद्रव्य है। जीव जो राग द्वेष करता है उसके कर्म के उदय में जुड़कर वही जीव को दुख रूप है। हम आज तक तो परद्रव्यों से ही मुझे सुख या दुख मिलता है ऐसे मानते हैं, ये मूलभूत मिस्टेक है। उसके कारण आठवें कर्म बनते हैं और बंद उदय का यह चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता है। अब कितनी स्थिति थोड़ा लो क्या है, 2-5 मिनट ये पूरा कर देती, ये सारा हमने समझा है फिर भी इसमें से पढ़ते तो ख्याल में आएगा। अब कितनी स्थिति होने पर कितना आबादा कल रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। इसका प्रमाण है 1 कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति वाले कर्म में 100 वर्ष आबादा काल होता है। कोड़ी काल से करोड़ गुना करोड़, 1 करोड़ में 1 अंक के बाद 7 गिनती होती है और कोड़ी में 1 अंक के बाद यानी उसके ऊपर 14 बिंदी होती है। इसमें सागर वर्ष अर्थात 1 सागर 2 सागर 3 सागर ऐसे 1 कोड़ी बार सागर वर्ष जितनी स्थिति आयु बिना अन्य सात कर्मों में आबादा काल का यह प्रमाण है, उसमें ये प्रपोर्शन में होता है। और आयु कर्म में जब बांधी है तब से मरण तक का वो आबादा काल। तीव्र मिथ्यात्व के कारण जीव अधिक से अधिक स्थिति वाला मिथ्यात्व यानी दर्शन मुनि कर्म का बंध करता है, तब उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है और 7000 वर्षों के बाद उसका उदय काल प्रारंभ होता है, अर्थात उसका आबादा काल 7000 वर्षों का है। हमने देखा था ना, एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100, तो 7 कोड़ा कोड़ी के लिए 700 और 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000 यानी 1700। उसके पश्चात 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्ण होने तक उसका उदय निरंतर चलता रहता है। एक समय के मिथ्यात्व परिणाम का यह फल है, तो अनेक समयों में बंधे हुए मिथ्यात्व का फल कैसे होगा उसकी कल्पना तुम कर सकोगे? सागर का नाप सुनने की तैयारी है तुम्हारी, तुम्हारा महासंगणक लाओगे तो भी इसका गणित नहीं समझ पाओगे, उसका थोड़ा सा नमूना देखो तो सही। मैं केवल स्थूल कथन ही करूंगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक योजन व्यास यानी डायमीटर और एक योजन गहरा गोल कुंड यानी गर्त यानी गड्ढा तैयार करो। यह सब अपनी कल्पना में ही करना है, समझी ना? चार कोष का एक योजन होता है, यह साधारण कोष या योजन नहीं है, महायोजन है। यह गर्त अति मुलायम रोम खंडों से थसाथस भर देना, खिगाऊ मत भरना। हम ऐसे करते ना, ये रात ऐसे बनाते, चावल अगर नापने हैं तो ऐसे करते, ऐसा नहीं करना, लेवल पर सपाट जैसे करना। रोम खंड का अर्थ भी जान लो, उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढे के बालक के बालों का अग्रभाग कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके उसे रोम खंड कहते हैं। भोग भूमि के जीवन के बाल का अग्रभाग अपनी कर्म भूमि के बाल के अग्रभाग से 4096 भाग जितना पतला होता है, इसलिए वो बाल बताए खास उसका स्पेशल मेंशन किया अपने अकेले बाल के अग्रभाग नहीं का, वो उत्तम भोग भूमि वाले के लिए। उस गड्ढे में कितने रोम खंड समा सकते हैं उसका भी गणित है, परंतु हम उसे छोड़ देंगे। 45 अंग प्रमाण यह संख्या है, हर 100 साल बाद एक रोम खंड निकालते जाना। जब यह गड्ढा पूरा खाली हो जाएगा तब उतने कालावधि को एक व्यवहार पल्य कहते हैं, हम जिसको ये पल्य ये वाला पल्य हुआ, पल्य यानी गर्त या गड्ढा, उसकी उपमा देकर यह प्रमाण बतलाया है, इसलिए पल्य सागर आदि उपमा मान के प्रकार है। जो हम संख्या गिनते हैं उसको संख्या मान कहते हैं और ये उपमा देकर समझाते हैं, जो असंख्यात वर्ष है इसलिए उसको उपमा देकर समझाते हैं, तो इसको उपमा मान कहते हैं। व्यवहार पल्ले के रोमखंड के प्रमाण को असंख्या करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करने पर, एक साल के समय गिनोगे तो भी कितने असंख्यात हो गए, तो ये असंख्या करोड़ वर्षों के समय से गुणा करने पर उद्धार पल्ले के रोमखंडों का प्रमाण निकलता है, और इसे असंख्यात वर्षों के समय से गुणा करने पर अद्धा पल्ले के रोमखंडों की संख्या निकलती है, और जितने वहाँ रोमखंड है उतने ही वहाँ वर्ष है। प्रत्येक पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर अपना अपना सागर का प्रमाण होता है, अर्थात असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य, असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य, अपना अपना व्यवहार अपना अपना पल्य का अपना अपना सागर, यानी क्या सागर के भी तीन भेद है, जैसे यहाँ पल्ले के भेद है ना, व्यवहार पल्य उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। तो व्यवहार पल्य 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्यों का एक व्यवहार सागर होगा, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर होगा, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होगा। कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में नापी जाती है, यानी उसमें भी वो बहुत बड़ा वाला सागर है उससे नापी जाती है। सागर अर्थात लवण समुद्र की उपमा लेकर यह संख्या समझाइए, देव और नारकी जीवों की आयु सागरों वर्षों की होती है, उनमें उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष है। मनुष्य और तिलियंचों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि वाले जीवों की तीन पल्ले होती है, ये उत्तम भूमि वाले के तीन पल्ले की आयु। अभी लवण समुद्र में आप कितने पल्ले, कितने ऐसे खड्डे हो सकते हैं उसको नापेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर होता है, तो एक सागर में उतने, वो बहुत लंबा चौड़ा गणित आपने सीखा भी होगा। जैसे यहाँ जैसे रोम खंडों में हम नापते हैं, वहाँ वैसे एक जल बिंदु में कितने रोम खंड होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें बहुत सूक्ष्म गणित है उसका, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत स्थूल यहाँ चर्चा चल रही है। ये सारा ही समय ज्ञान चंद्रिका में ये पूरा डिटेल बताया हुआ है पहले भाग में। उसकी तुलना में हमारा यह मनुष्य भाव कितना अल्प है। देखो ये सागरों से हमें क्या, यहाँ कहाँ ले जाना है, अभी हम कितना गिने चुने चाले ना, 50, 60, 70 मैक्सिमम 100 साल, 2-4 साल और ऊपर समझ लो। अभी तो 120 और 125 वाला तो कोई नहीं मिलता है, तो अपनी आयु कितनी है, बहुत अल्प है इन सागरों की तुलना में। ये तो मनुष्य बहुत बहुत अल्प है, उसका एक एक समय मूल्यवान। अनादिकाल से इस जीव ने अनंत भव धारण किए, परंतु अपने को पहचानने का कार्य नहीं किया, रह गया दूसरों में ही उलझा रहा और अपने को पहचाना ही नहीं उसने। ये वह कार्य इसी भाव में करना है, नहीं तो और अंधकाल भटकना पड़ेगा, चतुर्गति में घूमना पड़ेगा। अभी पुण्य करेंगे और स्वर्ग में जाकर वहाँ से तीर्थंकरों के समोचरण में जाएंगे, इस प्रकार कहने वालों के बारे में अचरज लगता है। जो लोग वर्तमान के फालतू संयोगों का लक्ष्य ने ममत्व छोड़कर शास्त्राभ्यास करके पुरुषार्थ नहीं करते, क्या वे स्वर्ग के ऐश्वर्य का ममत्व छोड़कर इनके पीछे लगने वाले हैं? अपने विचार करो। कुछ लोग विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के सपने देखते हैं, जिसे आगामी एक भव की वांछा है, उसके अभिप्राय में अनंत भव करने की इच्छा छिपी हुई है। पंचम काल का भर क्षेत्र का जीव सम्यक के साथ मरकर विदेह क्षेत्र में जन्मेगा नहीं। अभी भी किसी को सम्यक दर्शन होगा तो वो विदेह मनुष्य होगा, तो भी वो भोग भूमि का होगा, विदेह क्षेत्र में नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक के बाद मनुष्य होगा ना जन्म मरण, क्योंकि किसी ने मनुष्य यदि बांध दी, पहले मनुष्यायु बांध दी, बाद में सम्यक हुआ और मरा, तो भोग भूमि का मनुष्य होगा। विदेह क्षेत्र में तो वो सम्यक के साथ जाएगा ही नहीं, वहाँ कोई यहाँ से जन्मता है तो मान वो तो पक्का समझ लो वो मिथ्या तो सही ले आए। सम्यक्त होने के बाद आयु बंद किया हो तो स्वर्ग में देव होगा, सम्यक्त के पहले आयु बंद किया हो तो भोग भूमि का मनुष्य या तीन के या पहले नरक का नारकी होगा। हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ मरकर पहले मनुष्याएं बांधी हो तो विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा, परंतु वह भी दुर्लभ है, ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीव इस भव में तो मिथ्यात्व ही रहना चाहता है। जो अभी यहाँ से विदेश क्षेत्र में जन्मने के सपने देखता है, उसकी मान्यता में मुझे अभी यहाँ मिथ्यात्व ही रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त के बाद तो वो तो कुछ पॉसिबल नहीं है। यह जीव अनादिकाल से आज तक अनंत बार तीर्थंकरों के समोचरण में जाकर लौटा है, अनंत बार बाह्य मुनि पद धारण करके सम्यक्त के अभाव में अभी तक भव भ्रमण ही करता आया है। सम्यक्त प्राप्ति के सभी साधन कौन कौन से साधन, देखो संधि पंचेंद्रियपना, ज्ञान का उघाड़, प्रचारों की मंदता, जिनेन्द्र कथित सत्य उपदेश, इस उपदेश का मर्म बताने वाले ज्ञानी जीवों का सत्समागम आदि सब कुछ मिलने पर भी, ये सारा अभी हमें तो सबको उपलब्ध है, जो भविष्य के वादे करता है उसका कल कभी उगता ही नहीं। कायम के लिए हमेशा के लिए यह कार्य जीव अगले भव में करने के लिए छोड़ देता है। अस्तु, सागर में नहीं परंतु सागर के विषय पर से हम कहीं बहते चले गए है ना, परंतु इस भवसागर में न बहकर न डूबकर उसका किनारा इसी भव में पा लेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प हम